हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आंशी के पास उसकी जरूरत का कोई भी सामान नहीं था। ऊपर से अमन ने भी उसकी बातों को अनसुना कर दिया। आंशी मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर आई। तेजो जी डाइनिंग टेबल पर थी, उनके पास अमन बैठा था, जबकि चेतना जी घर के स्टाफ के साथ वहाँ खाना लगा रही थी। आंशी उनके पास जाकर बोली, लाइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा पहला दिन है, तुम बैठो। चेतना जी ने जबरदस्ती उसे अमन के पास वाली चेयर पर बैठा दिया। फिर उन्होंने तेजो जी से कहा, बीजी आप चलिए मेरे साथ। वो तेजो जी को अंदर किचन में ले गई और फिर बोली, देखिए ना हमारी आंशी कितनी सुंदर लग रही है, वरना उस लावण्या के मेकअप से पुते हुए चेहरे को देखकर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता था। अब बस भी करो चेतना, तेजो जी ने उन्हें डांटा तो चेतना चुप हो गई। अच्छा ठीक है, अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं। इसने इतनी अचानक शादी कर ली है, कुछ सोचा है कि रिश्तेदार वगैरह को क्या कहेंगे? चेतना जी ने दबी आवाज में पूछा। अमन इस बारे में अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो बहुत समझदार है और कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेता। उसने आंशी से जल्दबाजी की है तो जरूर कोई बात होगी। तेजो जी की बात सुनकर चेतना जी ने अपने दोनों हाथ मुंह पर लगाए और फिर आंखें बड़ी करके कहा, कहीं आंशी प्रेग्नेंट तो नहीं है बीजी? अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो, अभी रिश्तेदारों और बाकी लोगों से पहले जो घर पर मौजूद है उन लोगों की फिक्र करो। आंशी के पास उसकी एसेंशियल थिंग्स भी नहीं है, ब्रेकफास्ट के बाद उसे शॉपिंग करने के लिए भेज देना और उसे यहाँ कंफर्टेबल करने की कोशिश करो, देखो अभी भी कितना घबरा रही है। तेजो जी ने अमन और आंशी की तरफ देखकर कहा। उन्हें उन दोनों की पीठ ने दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ कुछ और ही चल रहा था। तुमने मेरी बात इग्नोर की और बाहर आ गए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आंशी ने अपने एक हाथ में बटर नाइफ पकड़ा था और उससे अमन को धमका रही थी, इसे नीचे रखो, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा, मॉम और दादी यही हैं, मेरे सामने न सही उनके सामने तो अच्छी बहू होने का दिखावा कर सकती हो ना? अमन ने दबी आवाज में कहा। तेजो जी और चेतना डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो आंशी बटर नाइफ से ब्रेड पर बटन लगाने लगी। उन्हें देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर वो ब्रेड अमन की तरफ बढ़ा दी। ये लीजिए, उसने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। उसके ऐसा करने पर अमन उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था, जबकि चेतना जी और तेजो जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। चेतना जी ने कहा, देखा बीजी आपने, इसे अभी से ही अमन की कितनी फिक्र है। और दूसरी तरफ अमन, अचानक उनका मुंह बन गया और फिर वो अमन से बोली, तुम्हें इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना? देखो इसके पास अपनी जरूरत का कोई भी सामान नहीं है, जल्दबाजी में शादी तो कर ली, चलो हमने भी कुछ नहीं कहा, पर इसका सामान, खैर छोड़ो वो सब, ब्रेकफास्ट के बाद तुम ऑफिस जाने के बजाय आंशी के साथ शॉपिंग के लिए जाओगे और उसे जो भी चाहिए होगा वो तुम इसे दिलाओगे, कपड़ों से लेकर हर एक चीज तक। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आंशी ने जवाब दिया। नहीं आंशी, तुम्हें इतना हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं होने की वजह से तुम ठीक से तैयार भी नहीं हो पाई। तुम अपने लिए कोई भी कंफर्टेबल कपड़े खरीद सकती हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें यहाँ सूट या साड़ी ही पहनती पड़े, तेजो जी ने कहा। वो अपनी तरफ से आंशी को कंफर्टेबल फील करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अभी हमारी नई नई शादी हुई है तो ज्यादा बाहर घूमना अच्छा नहीं रहेगा, या मैं ऐसा करूंगी कि मुझे जो भी सामान चाहिए होगा मैं लिस्ट बनाकर इन्हें भेज दूंगी, ये मेरे लिए ले आएंगे। बोलने के बाद आंशी ने अमन की तरफ देखा और कहा, आप ले आएंगे ना जी? जी जरूर, अमन ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा। चेतना जी ने देखा आंशी ब्लश कर रही थी तो उन्होंने कहा, लगता है बीजी हम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी का काम कर रही हैं, तुम दोनों ऐसा क्यों नहीं करते कि बाहर गार्डन में जाकर ब्रेकफास्ट करो, आखिर नई नई शादी हुई है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। चेतना सही कह रही है, तेजो जी ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा। फिर उन्होंने अपने हाउस स्टाफ को आवाज लगाई, सूजी ऐसा करो अमन और आंशी का ब्रेकफास्ट गार्डन में रखी टेबल पर लगा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ ही ब्रेकफास्ट कर लूंगी, आंशी बोली। आंशी के मना करने के बावजूद चेतना जी ने उन दोनों का ब्रेकफास्ट बाहर की टेबल पर लगवा दिया। अमन उस वक्त बहस करने के मूड में नहीं था, इसलिए वो आंशी के साथ बाहर आ गया। इतनी ओवर एक्टिंग करने के लिए नहीं कहा था, ये क्या लगा रखा है तुमने, और तुम मुझे उनके सामने ए जी आप करके बात क्यों कर रही हो? अमन चेयर पर बैठते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, बस उन्हीं को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है फिर, जो करना है जल्दी करना, तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीनों का टाइम है, उसके बाद मैं डाइवोर्स फाइल करने वाला हूँ, इतना रूड होने की भी जरूरत नहीं है। अमन की बात सुनकर आंशी का चेहरा उतर गया, वो चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगी। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम कोई उम्मीदें ना लगाओ और ना ही ज्यादा मुझसे अटैच हो, कुछ भी ऐसा मत करना कि बाद में हर्ट होना पड़े, उसे उदास देखकर अमन ने कहा। आंशी ने हाँ में सिर हिलाया, वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद जब अमन वहाँ से जाने लगा, तब आंशी ने कहा, आपसे एक बात पूछनी है अमन सर। अमन वापस चेयर पर बैठ गया और कहा, तुम्हें मुझे सर कहने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे एजेंसी जाना है। जब मैं रिजाइन करने आई थी तब आप मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर करने वाले थे, हाँ, और मुझे तुमने ही रोका था। मैंने खुद को और तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को वहीं रोक लिया था। तुमने मुझे याद दिलाया था कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, मुझे लावण्या के लिए लॉयल रहना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हें मूव ऑन करने में दिक्कत हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता आंशी, तुम ऑलरेडी विधिक की वजह से परेशान हो, बट हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहो, लेकिन साथ ही ये भी जानता हूँ तुम्हें वो खुशी मेरे साथ कभी नहीं मिलेगी। अमन ने अपनी तरफ से आंशी को समझाने की कोशिश की, आंशी ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया। तब अमन बोला, हाँ, तुम इन 6 महीनों में अपने सभी ड्रीम्स पूरे कर सकती हो, मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करूँगा, एक हस्बैंड ना सही, एक अच्छा फ्रेंड बन सकता हूँ, कहकर उसने आंशी की तरफ हाथ बढ़ाया। आंशी ने उससे हाथ मिलाया। तुम अपनी जरूरत के सामान की लिस्ट मुझे मैसेज कर देना, मैं आते टाइम ले आऊँगा। अमन अपनी तरफ से आंशी को समझाकर वहाँ से जा चुका था। उसके जाने के बावजूद आंशी वहाँ बैठी रही। ये सब मेरी बेवकूफियों के चलते ही हो रहा है, इससे अच्छा इसे उस दिन अपने दिल की बात कहने देती। मुझे क्या पता था हम दोनों की शादी हो जाएगी, ये भी पागल है, उस बात को दिल से लगाकर बैठा है। अब जब शादी हो गई है तो क्या दिक्कत है साथ लाइफ बिताने में। आंशी ने बच्चों की तरह मुंह बनाया। जब उसे वहाँ की धूप चुभने लगी तब वो अंदर चली गई। विधिक पिछले 2 दिनों से घर नहीं आया था। उसके घर न आने का कारण दिव्याना अच्छे से जानती थी। वो घर पर पिछले 2 दिनों से अकेली थी। इस बीच लावण्या भी उससे मिलने नहीं आई। सीसीटीवी कैमराज होने की वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकती थी।
अजीब मुसीबत है यार, मैं यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती, और ऊपर से वो विधिक राणा, वो कहाँ होगा उसका कुछ पता नहीं चला। मेरे पास तो फोन भी नहीं है जो उससे बात कर सकूं। होटल मैनेजर से भी कहा था उससे बात करने के लिए, पर उसका फोन नहीं लग रहा। खुद से बातें करते हुए दिव्याना किचन में गई। सुबह का नाश्ता बनाने के लिए वो सब्जियां और चॉपिंग बोर्ड के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। अकेले होने की वजह से उसका खाना खाने का भी मन नहीं करता था। एजेंसी में भी क्या हुआ कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसा करती हूँ, बाथरूम में जाकर बात करके देखती हूँ। विधिक के वहाँ होने के बावजूद दिव्याना काफी सतर्कता से काम कर रही थी। वो बाथरूम में गई और उसने मिस्टर तेज प्रताप दत्त को कॉल किया। सर, आपने मुझे कोई अपडेट नहीं दी, विधिक का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, वो पिछले 2 दिन से घर नहीं आया है। क्या कन्फर्म हुआ कि वही लड़की विधिक की गर्लफ्रेंड है? हाँ, तुम सही कह रही थी दिव्याना, वही लड़की विधिक की गर्लफ्रेंड है, उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो चुका है, मिस्टर दत्त ने जवाब दिया। तो अब कहाँ है वो लड़की, आपने उसे अरेस्ट कर लिया क्या? और अमन, उसने इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की? यहाँ भी तुम सही थी, वो उसे हर तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उस दिन काफी कुछ हुआ, मैं कॉल पर तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, बस ये जान लो इस मिशन के चलते अमन की शादी विधिक की गर्लफ्रेंड से हो गई है। क्या? दिव्याना ने हैरानी से कहा। मिस्टर दत्त ने अभी अभी जो कहा उस पर उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल था। उसने तुरंत खुद को संभाला और आगे पूछा, लवी, उसने कुछ नहीं कहा, वो तो अमन के साथ एंगेज्ड है, वो सब अमन और लावण्या ने आपस में संभाल लिया है। चलो मिलते हैं एजेंसी में, जब भी टाइम मिले जरूर आना और विधिक की अगली अपडेट देती रहना, कहकर मिस्टर दत्त ने कॉल कट कर दिया। मिस्टर दत्त से बात करने के बाद लावण्या को बहुत बड़ा झटका लगा। वो उससे उबर पाती उससे पहले उसे विधिक की आवाज सुनाई दी तो वो जल्दी से अपना फोन छुपाकर बाहर आई। विधिक की हालत खराब थी, उसने वही कपड़े पहने थे जो 2 दिन पहले पहले वो घर से पहन कर निकला था, उससे काफी शराब भी पी रखी थी। उस वक्त वो नशे में नहीं था, फिर भी उसके कपड़ों से शराब की स्मेल आ रही थी। आप कहाँ थे विधिक जी? हम पिछले 2 दिनों से आपके लिए परेशान हो रहे थे और आप अब घर आ रहे हैं। आपने ये क्या हालत बना रखी है अपनी? विधिक को देखते ही दिव्याना तुरंत शिवांगी की तरह बात करने लगी। उसकी बात सुनकर विधिक जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। दिव्याना हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। विधिक के चेहरे और हंसी के भाव में एक अलग ही खौफ था। सब ठीक है ना विधिक जी? हमें आपकी फिक्र हो रही है, शिवांगी बोलते हुए उसके पास आ रही थी। तभी विधिक ने उसे पकड़कर घुमाया और अपने बिल्कुल करीब ले आया। उसने दिव्याना को अपने एक हाथ से पूरी तरह काबू कर रखा था। ये आप क्या कर रहे हैं विधिक जी? हमें छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। विधिक की पकड़ टाइट होने की वजह से दिव्याना को सच में दर्द महसूस हो रहा था। बस करो ये दिखावा करना, तुम थकती नहीं हो क्या? सारे दिन विधिक जी करते हुए विधिक जोर से चिल्लाया। उसने दिव्याना को और भी कसकर पकड़ लिया। ये आप क्या कह रहे हैं? हम तो आपको हमेशा इसी नाम से बुलाते हैं। दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा लाल हो गया था। विधिक ने दिव्याना को पकड़कर दीवार के लगा दिया। उसने डाइनिंग टेबल पर रखा चाकू उठाया और दिव्याना की गर्दन पर लगा लिया। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं इस नौटंकी से जरूर थक गया हूँ। जल्दी बताओ मेरी आंशी कहाँ है? अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जान ले लूँगा मैं। ये आप क्या बोल रहे हैं? कौन आंशी? दिव्याना ने मासूमियत से पूछा। आंशी मतलब मेरी बटरफ्लाई। मैंने तुमसे कहा ना, मेरे सामने दिखावा मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारी ही सीक्रेट एजेंसी में भिजवा दूं। फिर खेलते रहना मेरी जासूसी का खेल, विधिक ने सर्द आवाज में कहा। गुस्से से उसकी आंखें लाल थीं। वही विधिक की बात सुनकर दिव्याना का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसे नहीं पता था कैसे, पर विधिक उसकी सच्चाई जान चुका था और इस वक्त वो जरा सी भी हिलती तो विधिक उसकी बर्दन काट देता।